سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سورة بقرة آية نمبر 142 سے 147 اور دوسرے پارے کا یہ پہلا سبق ہے ہمارا آج کا لیسن جو ہے آیت نمبر 142 سے 147 ہے اللہ تعالیٰ سے بہت مدد مانگتے ہوئے ہم آج دوسرا پارا شروع کریں گے اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایک پارے کے پڑھنے کے دوران ہی ایک امت بنا دے آج کے دور میں جو امت مسلمہ بکھری ہوئی تسبیح کے موتیوں کی طرح بکھری ہوئی دکھتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایک پارے سے ہی نصیحت لینے والا بنا دے دوسری تھوڑی سی بات کہوں گی کہ آپ جو بھی آپ سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے آپ کو میری آواز سے شاید تھوڑی سی الجھن آ رہی ہوگی یا گھبراہٹ ہوگی تو میں اور بہت ساری میرے پاس آپشنس موجود تھی مجھے پتہ کہ ہو سکتا ہے کہ آج میرے اس طرح بات کرنے سے آپ لوگوں کو زیادہ سمجھ نہ آئے یا آپ کو مزہ نہ آئے اور میں آپ کو اس کی جگہ پچھلی بہت ساری تفسیریں اسے ایک لیسن کی 4 گھنٹے کی بھی تفسیر موجود ہے ماشاء اللہ ہمارے پاس تو وہ بھی پلے کروا سکتی تھی اور مجھے یقین ہے کہ آپ بہت خوشی سے اس کو سنتے لیکن کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میں آج پھر بھی خود ہی کر رہی ہوں اس میں سے سب سے پہلی بات ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں کہ جس نے مجھے صحت کی حالت میں پڑھانے کا موقع دیا تو میں ذرا سی تکلیف پہ آرام سے اگر بیٹھ جاؤں گی تو پھر میں کبھی بھی آپ کو حضرت ابراہیم کی مثالیں نہیں دے سکوں گی یعنی اپنے اوپر عمل کرنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جب میں آپ کو یہ کہہ دیتی کہ آج میں نہیں پڑھا پا رہی کیونکہ میں بیمار ہوں تو اس میں کوئی بری بات نہیں تھی انسانوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے لیکن میں آپ کی ان دعاؤں سے محروم رہ جاتی جو ابھی اس وقت سنتے وقت آپ کے دل سے نکلیں گی بہت دفعہ ہم دوسروں کو کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرنا آپ یقین کریں کہ میں نے پورا ویکینڈ اپنے آپ کو اس طرح بچایا جیسے شاید کوئی بجلی کے تاروں سے خود کو بچاتا ہے کس بات سے کہ میں نے بولنا نہیں ہے कल रात को दर्स थे, दो बाहर थे कहीं दूसरे शहरों में, और बहुत वो एक स्पेशल दर्स थे। तो मैंने पूरा दिन अपने आप को, कह सकती हूँ कि मैंने इस तरह अपने गले को बचाया कि मैं इशारों से बात करूँ, लिखूँ भी, बोलूँ भी ना, ताकि मैं उस वक्त बोल सकूँ और मैं ये ना कहूँ उनको कि मैं उस वक्त तकलीफ नहीं। और मैंने उनको बिल्कुल नहीं कहा कि मेरी गले में कोई पसला है या मुझे कुछ प्रॉब्लम है। दो जगह, दो शहरों में दर्द थे। उसके बाद मुझे जितनी लोगों की दुआएं मिली स्टूडेंट्स की सुबह उठ के, और जो, तो मैं सोची थी, एक तो ये था कि मैं एक मैसेज भेजती, मुझे दुआओं में याद रखे, मेरे लिए दुआ करें, तो क्या मुझे ज्यादा दुआएं मिलती? मैंने तो नहीं किसी से कहा एक बार भी, लेकिन उनको आवाज से अंदाजा हो गया होगा, आई डोंट नो कैसे हुआ। मैं कोशिश करके तो बहुत ऊंची अभी भी बोल रही हूँ। तो कहने का मतलब ये कि काम करते रहे ना तो दुआएं ज्यादा मिलती हैं। यकीन करें, हमदर्दियाँ उन लोगों को जो मिलती है ना, जो काम छोड़ देते हैं, वो सिर्फ रहम आता है उन पे। अच्छा, आज फिर मजबूर हैं, आज फिर इनकी छुट्टी है, अच्छा अल्लाह इन पर रहम करे, उसके बाद दिल से वो निकल जाते हैं। तो मेरा ये फैसला आपकी दुआएं लेने के लिए भी है। तीसरी चीज मैं कहूंगी कि इसको आइंदा की रिकॉर्डिंग्स में भी रखें। इसकी जगह कहीं नहीं थी, आवाज अच्छी नहीं थी, हम दूसरी रिकॉर्डिंग डाल दें, बिल्कुल भी नहीं डालें। ये मेरे एक अमल से आप लोगों के लिए और आने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी एक दलील होनी चाहिए कि बीमारी में सुनना मुश्किल है या सुनाना मुश्किल है, बोलना मुश्किल होता है कि सुनना मुश्किल होता है? तो अगर कोई बोल सकता है तो कल इंशाल्लाह ताला अगर मैं बीमार हो गई तो मैं सुन भी सकूंगी। तो ये सिर्फ एक तरबियत की बात है, और मुझे यकीन है कि जब मैंने यहाँ बैठना है, मैंने ठीक भी तभी होना है। मैं आपको पूरे यकीन से कह रही हूँ, अभी भी घड़ी देख लें और आप क्लास के एंड पे देखेंगे तो मैं अपने आप को इससे बहुत बेहतर महसूस करूंगी। अभी भी महसूस कर रही हूँ, जब वीकेंड बीच में आ जाते हैं जिसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन होती है, तो मेरी तकलीफ बढ़ जाती है। हालांकि अमूमन ये होता है कि रेस्ट करने, मैंने पूरा दिन कल रेस्ट किया, कुछ भी नहीं किया सिवाय रेस्ट के और जो बेसिक जरूरियात थी। तो कहने का मतलब ये है कि हम इंशाल्लाह इसको आज लेंगे, और इतना खूबसूरत सबक मैं मिस भी नहीं करना चाहती थी। और सबसे बड़ी बात है, पारे का पहले ही सबक छोड़ दूंगी तो फिर मैं कल अगला सबक आपको किस सोच के साथ पढ़ाऊंगी, तो एक जहन सासी भी होती है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हुए हम आज का सबक शुरू करेंगे। यकीन कीजिए कि अगर आप आज का सबक समझ गए और मैं समझा गई, तो फिर इसके बाद आप बेशक छुट्टी कर लें, लेकिन आपको छुट्टी करने ही नहीं देगा। तो चंद बातें मैं पारे के आगाज में हमेशा ही करती हूँ आपके साथ, इस पारे के और इस सबक के साथ करके फिर आगे चलूंगी। पहला पारा हमने सूरत बकरा का जो देखा, तकरीबन सूरत यहाँ हाफ हो गई। अगर आप देखें तो सूरत बकरा की टोटल कितनी आयतें, 286। 286 को आधा करें तो कितनी बनेंगी, 143। 143वीं 143 आयत पे सूरत आदि होती है। और आज आप हैरान होंगे कि आयत 143 पे ही अल्लाह ने उम्मत मुस्लिमा को पुकारा है, वकजालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन। अभी तक हम सूरत बकरा का हाफ कर चुके हैं। सूरत बकरा को एक नाम उलमाए कराम ने सूरतुल उम्मतैन दिया है, दो उम्मतों की सूरत। इसका फर्स्ट हाफ, पहला नस, नस्फ अव्वल कह लीजिए, बनी इसराइल से मुतल्लिक था, और हमने अपनी तौफीक के मुताबिक उसको समझा भी और समझाया भी। बनी इसराइल माजी के मुसलमान थे, नबियों की औलाद थी, अल्लाह ने उनको दुनिया की हिदायत के लिए चुना। शुरू में ठीक रहे, फिरौन की गुलामी में जब तक थे तो ठीक थे, लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए से इतनी बड़ी दौलत मिल गई आज़ादी के नाम की, तो फिर आज़ादी की आजमाइश में पूरे ना उतरे, और वो सब कुछ किया जो हम पढ़ चुके हैं। अगर मैं इस वक्त आपको वो सारी आयतें दोहरा दूं तो आपको फायदा तो बहुत होगा, लेकिन शायद आप में से कुछ लोगों को तकरार लगे। लेकिन हमने पहले पारे में भरपूर तरीके से 3 बार ये बात पढ़ ली कि या बनी इसराइल अस्कुरु नेमती अल्लती अनमतु अलैकुम। कहीं कहा गया औफू बेअहदी, औफी बेअहदी कुम, कहीं उनको 10 कमेंडमेंट्स याद दिलाए गए। तो बनी इसराइल जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थे, वो अपने बाप दादा के तौर तरीकों को ना सिर्फ ये कि याद करते थे बल्कि उस पर फख्र भी करते थे। बनी इसराइल ने या उस उमासी के मुसलमानों ने वो फजीलत याद रखी जो उनको एक किस्म की बड़ाई मिली नबियों की औलाद होना और सब कुछ, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी को भुला दिया। तो जब आप किसी को एक कुर्सी पे बिठाते हैं, अब इमेजिनेशन में लाएं कि किसी ने आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और आपसे कहा कि आप इधर बैठकर काम कीजिए। जब आपको बिठाया जाता है तो पूरी तरह से आपको उसके लिए ट्रेन किया जाता है, गाइड किया जाता है। उसके लिए अल्लाह ताला ने बनी इसराइल में नबी भेजे। अंबिया कराम ने हर चीज़ जिसकी उनको तवक्को थी कि उनकी ज़िंदगी में आएगी वो दे दी। फिर उसके बाद कुछ अरसा उनको वो सबक याद रहा, लेकिन फिर वो भूल गए, सुस्ती आ गई। हमने चार वजूहत पढ़ी हैं पहले पारे में, जहाँ आप लोगों को मनोसलवा का तस्करा याद आ रहा होगा। अगर अतस तब्दिलू नल्लजी अदना बिल्लजी व खैर, अल्लाह ताला ने काला को छोड़ के अदना को भूलते हो, तो हिर्स लालच तमा और हुब्बे दुनिया थी। सबसे पहले इनके मजहबी तबके में बिगाड़ आया कि उन्होंने दीन की जिम्मेदारी को समझने की बजाय दीन को दुनिया बनाने का जरिया बना लिया। और जब दीनदारी दुनियादारी में ढल जाती है या दीनदारी दुकानदारी बन जाती है, तो आम अवाम बेचारे जहालत की मौत मरते हैं। उनके साथ भी यही हुआ। दीनदारों ने अपने ऊपर से नजरें हटाने के लिए लोगों को ऐसी बहसों में मुब्तला कर दिया कि जिनका ताल्लुक ना तो फराइज से था, ना बुनियादी दीन के रिचुअल से था, बल्कि छोटी छोटी बहसों में उनको डालकर बनी इसराइल के 12 बड़े फिरके बन गए थे। उसके बाद होते होते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को अगर हम सामने रखें तो 71 सेक्ट्स फिरके बने थे यहूद के, नसारा के 72 बने, और आपने फरमाया कि मेरी उम्मत के 73 यानी 73 बनेंगे। तो फिरका वारियत में जब कौम बटी, उसकी कुव्वत टूटी, बजाय इसके कि सब मिलकर दुश्मन यानी इबलीस से लड़ते और शिर्क का कला कमा करते, आपस में लड़ने लग गए, एक दूसरे पे कीचड़ उछालते। दूसरी जो उनके उलमा में बहुत बड़ी खराबी आ गई थी, वो हुब्बे ज़र थी, सोने की मोहब्बत थी। वो बैतुल मक़दस जिसको अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़रिए से बनवाया था कि यहाँ अल्लाह का नाम बुलंद किया जाए, जिन्नात की मदद ली गई थी उसको बनाने में, ये चीज़ भी हम कुरान में पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे, उधर बैठकर वो सूद का लेन देन करने लग गए। ये बुनियादी वजह बनी थी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल के इरादे की, कि हज़रत ईसा ने जाकर इनको डांटा था यहूद के उलमा को कि तुमने अल्लाह के घर को चोरों का भट बना दिया। ये इनके आज भी किताबों में मौजूद हैं बातें कि तुम अल्लाह के घर बैठ के सूद के काम करते हो। तो इन्होंने सोचा कि ये शख्स हमारे ऊपर बहुत तनकीद करता है, तो पहले तो इसको रास्ते से हटाते हैं। चुनाचे उन्होंने अपने गुमान में हज़रत ईसा के कत्ल की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने उनको बचाया और आसमानों पे ले गए। खैर, वो बात गुजरी, वक्त गुजरता गया। फिर जब नबी सल्लम का दौर, जिस दौर में अब ये सूरत नाजिल हो रही थी, तो नबी सल्लम का मदीना में आना, आप में से जुमला बोलूंगी, ये बड़ी अहम बात है। सदियों से पिस रही है बनी इसराइल, कहाँ हज़रत मूसा का दौर, यूसुफ का दौर और पिछले सुनते जाएं, अब नबी सल्लम का दौर आ गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीते जागते अल्लाह की तरफ से एक बेजीना, एक दलील बनकर मदीना वालों में मौजूद है। सब छोड़ दो, सुनी सुनाई छोड़ दो, 4,000 साल में लोगों ने कहा होगा अच्छा जो नबी आएगा मानना मानेंगे, अपनी मस्तियां करते रहे, इट्स ओके, होता है, उस्ताद पास ना हो खैर मस्तियाँ होती हैं, माँ बाप घर में ना हो बच्चे शोखियाँ करते हैं, बट आज मदीना में तुम्हारे सामने वो हस्ती मौजूद है कि जिसका जिक्र तुम्हारी किताबों में था, जिसकी निशानियां तुम्हारी किताबों में थी, उनकी किताबों में ये बात मौजूद थी कि आखिरी नबी जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड नहीं थे। आज के सबक में हम पढ़ेंगे यारिफूनहू कमा यारिफूना बनाहुम, और यारिफून तारुफ मारफत इल्म से आगे का दर्जा है, वहां जहां आएगा लफ्ज मैं इंशाल्लाह थोड़ा खोलूंगी आपके सामने। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहां आना उनके लिए बज़ाते खुद अब इस बात की दलील थी कि आप ही वो नबी हैं जिसका जिक्र हमारी किताबों में था, लेकिन वो नहीं माने। उनको एक बात नहीं बस पता थी उनकी किताब में कि ये आखिरी नबी बनी इस्माइल में से आएगा। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, ज्यूम कर रहे थे अपने ही तौर पे, जैसे इमेजिनेशन में होता है कि ये भी बनी इसराइल में से आएंगे जैसे कि बाकी आए थे। बस ये इतनी सी बात ने सगे सौतेले का फर्क डाला और फिरका वारियत की आग दिल में थी, लिहाजा वो नहीं माने। यहां तक हम जो حصہ پڑھ چکے سورت بقرہ کا. پچھلوں کو بھول جائیں, وہ لوگ جن کے بیچ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں ان کو اللہ نے 3 بار کہا یا بنی اسرائیل, یا بنی اسرائیل, آمینو ولا تکونو اول کافرین بھی. یہ سارے جملے اگر آپ کو یاد آ رہے ہیں پڑے ہوئے, تو مدینہ کے یہود کو تھے. بار بار دعوت دی, واپس ہو, فون کیے, کال کی, میسج بھیجے, سیدھے ہو جاؤ, ٹھیک ہو جاؤ, اپنے کام کو سمجھو, پیار سے بتایا. کبھی یہ نہیں کہا کہ غصہ کیا یا ڈنڈا مارا. اللہ کے کلام میں بڑا پیار ہے ان کے لیے, اور میں خود سوچتی ہوں کہ واقعی اللہ کو پیار بڑا تھا اس قوم سے, آج بھی فیل ہوتا ہے. تبھی تو دنیا کی دولت ان کو دی بھی ہے. لیکن وہ نہیں مانے, حتیٰ کہ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلے عام مخالفت شروع کی, تو اب وہ وقت آ گیا تھا کہ اب ان سے ان کا عہدہ چھین لیا جائے, عزت سے لے لیا جائے, زبردستی لے لیا جائے, غصے سے لے لیا جائے. بات ایک ہی ہوتی ہے, عقل مند کمپنیاں اور بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا, وہ بڑی عزت سے عہدہ لیتے ہیں, تھینک یو بولتے ہوئے, شکریہ کے ساتھ, پھولوں کا بکے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں, کہتے ہیں اب ہمیں آپ کی ضرورت نہیں رہی. کوئی جاہل اجاڑ ہیں تو وہ کہتے ہوں گے نکل جاؤ یہاں سے, تمہاری ہمیں ضرورت نہیں ہے. لیکن بات ایک ہی ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے کام سے ہٹا لیا. آج کے اس سبق میں وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ جب ایک کو ہٹایا تو دوسرے کو لانا تھا نا. آج اس سبق میں امت مسلمہ کی آپ کہہ لیجئے تاج پوشی کی آیتیں آ رہی ہیں. اتنا اہم سبق ہے کہ اگر آپ میں کوئی مس کر رہا ہے, اس وقت نہیں ہے, مجھے نہیں پتا کون ہے آج کون نہیں ہے, جو مس کر رہا ہے وہ بہت بڑی چیز مس کر رہا ہے. کلاس میں بیٹھ کر استاد کے سامنے بیٹھ کے جو بات سمجھ آتی ہے وہ بعد میں اس طرح نہیں آتی, اللہ یہ کہ آپ پھر پوری کوشش کریں. تو اب جو آگے کا سبق ہے, یعنی پیچھے 2 رکوع پورے جس میں بیت اللہ کی تعمیر کا قصہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت تھی. اب یہاں سے آپ ذرا مزاج دیکھیں تو پھر میں آیت شروع کروں گی. 2 رکوع پیچھے پوری تمہید شروع ہو گئی تھی, اشارے بدل رہے تھے. کعبہ کے بنانے کی ایک دم باتوں کی ضرورت ہی نہیں تھی. بنی اسرائیل کے فوراً تذکرے کے بعد وَمَنْ يَرْغَبُ مِلَّتْ إِبْرَاهِيمَ کی بات کیوں آ گئی, پھر ابراہیم کی وہ دعا کیوں آ گئی کہ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ. یہ سارے اشارے تھے. یہاں سے پہلا اصول تو یہ لکھ لیجئے, ذہن سازی. ہمارے دین میں تبلیغ کا بہت خوبصورت اصول ذہن سازی ہے. پہلے لوگوں کے مائنڈ میک اپ کرو. تحویل قبلہ کا بھی حکم نہیں ہے. ابھی جس رد عمل کی توقع کی جا سکتی تھی, اللہ تعالیٰ نے اپنے عالم الغیب ہونے کے ثبوت میں پہلے سے نبی کو بتا دی کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا, کہ نبی عن قریب کچھ نہ سمجھ لوگ یہ کہیں گے کہ ان کو ان کے اس قبلے سے کس نے ہٹا دیا. ابھی ہوا نہیں کچھ, اب آگے 2 رکوع تک یہی بات چلے گی. قرآن پاک میں کوئی بات اتنی تکرار سے نہیں. آج کے سبق میں اگر آپ لفظ لی دیکھیں نا, آپ کو میں آج کا ایک ایکٹیویٹی, لام لامزر لی, حرف تاکید ہوتا ہے عموماً, شد, شدیں بھی تشدید شد کے لیے ہوتی ہیں, اور تیسری چیز انا, یہ 3 لفظ بولتی ہوں پھر, لام, شد اور انا. آپ ان کو گن کے دیکھیں گے حیران ہو جائیں گے. ایک رکوع میں ایسے لگ رہا ہے ہر جملے میں کہا گیا بے شک, ضرور, بالکل, کیوں نہیں, ایسا ہی ہے. یعنی اتنی شد و مد ہے کہ کوئی اور حکم پورے قرآن میں اتنی تکرار کے ساتھ نہیں کہا گیا. وجہ اس لیے کہ ایک خاص مذہبیت ہوتی ہے. لوگ جو ریلیجن میں آتے ہیں نا, ریلیجس پیپل, ان کی ایک سوچ ہوتی ہے, وہ ظاہری چیزوں پہ توجہ زیادہ دیتے ہیں, کسی عمل کی روح کیا ہے وہ دل میں نہیں رہتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے, بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. اب اگر آپ میرے ہاتھوں کو دیکھ لیں تو آپ کو بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گا. آپ دیکھیے کہ 3 چیزیں اگر آپ پکڑ لیں نا, یہ جو بک ہے یہ خانہ کعبہ مکہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکہ میں تھے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدھر آ گئے ہیں, یہ چھوٹے یہ کارڈ دیکھ لیجیے ذہن میں, اب مدینہ میں آ گئے ہجرت کر کے. اس کے آگے اگر آپ ایک اور کارڈ جوڑ دیں تو, اور مدینہ سے آگے سیدھا چلتے جائیں نا, تو ادھر ملک شام آ جاتا ہے, سیدھا خط کھینچ سکتے ہیں آپ. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے, اب آپ امیجن کریں کہ آپ مکہ میں تھے, ये बीच में खाना काबा है, आप देखिए खाना काबा है, इधर ये रुकने यमानी है और साथ ही हिजर अस्वद है। जब नबी सल्लम नमाज पढ़ते तो इधर खड़े होते हैं, ये रुकने यमानी, ये हिजर अस्वद जो आखिरी है, तो आप जहाँ ख़त्म होता है आखिरी दीवार, आप जब यूं खड़े होते थे ना तो खाना काबा को भी मुंह होता था, और ये देखिए सीधा चलते जाए खत खेचे तो बैतुल मकदस को भी आपका फेस एक ही तरफ होता था, कोई इशू नहीं था। हर नबी ने खाना काबा की तरफ मुकर के नमाज पढ़ी है, ये बात याद रखिए। चौथे पारे की पहली आयत में पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह सूरह आल इमरान में। अल्लाह के नबी को बैतुल्लाह से मोहब्बत थी और ये कोई क्वेश्चन ही नहीं था कि किधर मुंह करें, मक्का में तो कोई सवाल ही नहीं उठा, नमाज फर्ज नहीं थी अभी। बट जो नफली इबादत थी, जो गार हिरा में जाके आपकी मनाजात थी, वो बैतुल्लाह की तरफ, और जब आप इधर पढ़ते ना तो दोनों ही किबले सामने होते। इसको कहते हैं इस्तकबाले किबलतैन, इस्तकबाल कहते हैं मुंह करना किबल से, जब हम किसी का इस्तकबाल करते हैं ना तो हम उनकी तरफ जा रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं, यानी मुंह करना दोनों किबलों की तरफ, ये बिल्कुल पॉसिबल था, कोई क्वेश्चन नहीं। अब ये आयते आपको पता है कि सूरत बकरा मदनी दौर के शुरू की सूरत है, ये बात तो आपको पता चल ही चुका है। अब जब मदीना में आप आए तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि मदीना में जाने के, अब ये सोचिए ये मदीना, अब अगर यहाँ मदीना में नबी सल्लम नमाज पढ़ते तो इधर मुंह करते ना बैकवर्ड, तो ये मुल्क शाम है तो इसको बैक हो जाती। मदीना के जो लोकल लोग थे ना, उसमें मजहबी लोग थे यहूद, यहूद के असर में ही औस और खजरज भी थे, जैसा कि आपको मैंने बताया कि पिछले दौर में भी लोग जो कौम गालिब होती है ना उसी के दीन पे आ जाते हैं। जैसे मिस्र में रहते वो गाय की पूजा शुरू हो गए थे ना, तो औसो खजरत जो थे मुशरिकीन, बट यहूद मदीना के असर में आकर वो भी बैतुल मकदस ही की तरफ मुंह करते थे। अगर अपने तरीके से कोई इबादत करते भी थे ना तो बैतुल मकदस में करते थे। नबी सल्लम अब हिजरत करके यहाँ आ गए हैं, फर्स्ट एवर फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि अब मुंह किधर करें। पहली ऑप्शन क्या थी कि जिधर करते थे उधर ही करें, जब इधर करेंगे तो बैकवर्ड, तो बैतुल मकदस के इधर। अब अगर आते ही नबी सल्लम ये मुंह इधर कर देते तो मदीना, जहां अल्लाह के नबी सल्लम इस्लाम फैलाने आ रहे हैं, जहां के लोगों को इस्लाम की दावत देनी है, वहां पहले से मौजूद मजहबी लोग यहूद एकदम अलर्ट हो जाते, कहते हो ये तो हमारे खिलाफ करने आए लोगों को। जाहिर है कि जिस दिन नबी सल्लम इधर करके मुंह नमाज पढ़ाएंगे तो कुछ लोग जो पहले से इनके वो फौरन इनके पास जाएंगे, भाई आप तो कहते हैं उधर मुंह करके नमाज पढ़े, ये तो इधर करते हैं, क्या हुआ, गड़बड़ होती ना। अल्लाह के नबी ने ऐसा नहीं किया। यहां से समझिए तबलीग के लिए पहले से मौजूद दीनदारों को साथ लेकर चलना चाहिए। ये अलग बात है कि वो साथ नहीं चलते, ये मैं दर्द के साथ आपको कहूंगी, ये दर्द एक जगह का नहीं है, ये 10 मुल्कों का दर्द मैं आपको बता सकती हूँ। जब आप किसी नए जगह जाकर छोटा सा दीन का काम क्यों ना करें, पहले से मौजूद दीनदारों की तरफ हाथ बढ़ाएं प्यार से मोहब्बत से, हम वही काम करने आए हैं जो आप करते हैं, आप भी कुरान और सुन्नत को मानते हैं, आप भी उसको मानते हैं, आइए कुछ काम करें, तो आप ही के साथ मिलके थोड़ा सा काम हम कर लें। बहुत थोड़े लोग इस दावत पे लबैक कहते हैं, रह जाते हैं, ये कोई हमारे खिलाफ है, अच्छा ये तो फिर इनकी तरफ लोग चले जाएंगे, नहीं हमारे पास तो पहले ही जगह नहीं है, हमारे पास जगह ही नहीं है, खाली जगह पड़ी होती है और कहते जगह ही नहीं है। हंसी आती है इस बात पे कि बंदा नहीं फटकता जिन जगहों पे, फिर भी कहते हम तो पहले ही ओवरबुक्ड हैं, आपको जगह हम जरूर देते। खैर किस्सा मुख्तसर, नबी सल्लम ने क्या किया, अब कुरान में कहीं हुक्म नहीं है। अब ये सारी बातें आज के सबक के अंदर आ रही हैं, आप इंशाल्लाह पहले से इसको कहानी की तरह सुन लें। कुरान में कहीं हुक्म नहीं है कि मदीना में आकर आपको कहा गया कि ऐ नबी अब आप अपना मुंह बैतुल मकदस की तरफ कर लें, नहीं है मौजूद। लेकिन वही खफी हदीस की हुज्जत की ये दलील है, अल्लाह का हुक्म था कि आपने कहा कि नबी आप बैतुल मकदस की तरफ पढ़ें। कितना बड़ा इम्तिहान था उन मुहाजरीन का जो भी बेचारे अपने घर बार छोड़ के आए। देखिए मक्का से प्यार ही बड़ा था और आके पता चला काबा भी छूट रहा है, और रोना आएगा ना, रोना आएगा, लेकिन उनका इम्तिहान था, ये इम्तिहान था। बैतुल मकदस की तरफ शुरू में मुंह करके जो नमाजें पढ़ाई गई 16 से 17 महीने, सवा साल कह लीजिए आपकी मेरी जुबान में, नबी सल्लम ने अपने साथियों समेत बैतुल मकदस की तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ी। दिल में दुख है, ग्रज है, तकलीफ है, ये मुझे ऐसे ही लग रहा है जैसे शादी करके लड़की को भी ले जाते हैं ना, पहले ही मैका छुट रहा है, और फिर कह दिया जाए अब शक्ल नहीं दिखानी उनको, फोन नहीं करना उनसे, बात नहीं करनी उनके साथ। तो लड़की और रोएगी कि माँ बाप इधर हैं तो मेरे ससुराल कहते हैं तो मुंह ही इधर कर लो। हमें अपने रिश्तों से बात समझ आती है ना। ये बहुत बड़ा टेस्ट था, लेकिन इस टेस्ट की हिकमतें बहुत सी थी। नंबर एक, मदीना के यहूद को कोई बुरा नहीं लगा, आपका आना उनको खिला नहीं। आपके इस करने का एक फायदा क्या हुआ कि यहूद ने आपको डिफरेंट नहीं समझा अपने आप से, बल्कि दिल में खुश थे वो, जिसको कहना चाहिए जेरे लब मुस्कुरा रहे थे। आज इन्होंने हमारा किबला माना है, कल देखना ये हमारा दीन भी मान लेंगे। इंग्लिश में जिसको आप कहते हैं यूज टू हो गए, फेमिलियराइज्ड हो गए, उनको लगा नबी सल्लम कोई हमारे दुश्मन बन के नहीं आ रहे। खैर ये काम हो गया। अब 16-17 महीने में मुसलमानों के कदम जमे, मदीना की जमीन पे इस्लाम का बीज डल गया। अगर शुरू में नबी सल्लम ये सारा कुछ कर लेते, एकदम एक और महाज यहूद से भी खड़ा कर लेते, पहले ही मक्का वालों से तो ईमान बचा कर आए थे, तो मुश्किल होती। तो यह अमल की बातें, आज के मुबल्लिगीन अल्लाह के लिए, अल्लाह जिनको तबलीग की तौफीक दे, मैं कहती हूँ हिकमत भी दे, वरना छुरी हाथ में पकड़ा दें और वो छुरी हाथ काट देगी अगर आप सही जगह से नहीं पकड़ेंगे, फल काटने की जगह पे। आज हमारे मुबल्लिगीन बाज़ दफ़ा जज्बात में आकर, ईमान के हरारत में आकर, जाते ही पहले ये भी गलत, ये भी तोड़ो, ये भी फोड़ो, हमारे दीन का ये मिजाज नहीं। और इसकी दलील पहले मक्का में मौजूद थी, 13 साल तक मक्का में बुत मौजूद थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत अपनी करते रहे। हम तो पहले दिन जाते हैं किसी के घर, कहते हैं सारी तस्वीरें उठाओ, ये सारे खिलौने उठाओ, सब चीज़ें उठाओ, फिर नमाज पढ़ेंगे हम। देखिए हमेशा लोगों को अपने करीब करें। खैर ये भी हो गया। उसके बाद क्या हुआ, जब मुसलमान जम गए, अब इन आयतों में अल्लाह ताला ने वो हुक्म देना था, अभी दिया कोई नहीं, आप कह लीजिए हिजरत से तकरीबन 15 साल बाद अल्लाह ताला ये आयतें नाजिल कर रहे हैं कि नबी अब वापस किबला उधर जाएगा। भला क्यों, बैतुल मकदस की तरफ मुंह करा के मुहाजरीन का टेस्ट ले लिया। एक तो टेस्ट उनका हिजरत से भी हुआ था ना कि घर बार छोड़ दिया और क्या छोड़ेंगे, लेकिन अल्लाह देखना चाहता था कि कहीं घर बार छोड़े हैं क्या, दिल के अंदर इस्लाम की असल रूह आई है नहीं, वो उन्होंने दिखा दी। अब टेस्ट किनका था, बड़े गौर से सुनिएगा। अब टेस्ट था मदीना के लोकल लोगों का और न्यू मुस्लिम्स का, जो मदनी दौर के शुरू में इस्लाम में दाखिल हुए। अब एक टेस्ट लेना मकसूद था, एक जैसे आपके टेस्ट होते हैं ना क्लास में, यही देखना होता है ना कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं और आप किस शौक से पढ़ रहे हैं। देखना ये था कि क्या इनके दिल भी मुस्लिम हुए हैं कि नहीं, क्या ये अभी भी जाहरी तौर पे ऊपर ऊपर दीन का एक छिलका लेकर आए हैं या इनका दिल मुसलमान हो गया। तो इन आयतों में इस सारे की बात है, और असल में जो सिखाया जा रहा है ना इसमें से, वो क्या है कि जाहर परस्ती, देखिए ना किबले को फेस करना। हम कहते हैं आपके घर जाके नमाज पढ़नी है, किबला किधर है? अगर आप सोचे अपने ऊपर लें, आप में से कोई आज फर्स्ट टाइम इधर आया है, अभी जोहर की नमाज होगी तो आप पूछती हैं कि किबला किधर है, राइट? किबला के एक जाहिर है, जवाहिर परस्ती, आपको हम कहेंगे इधर पढ़ लें, आप इधर शुरू कर देंगे, आप उधर कर दें, आप उधर कर दें, आप शुरू हो जाएंगी, बस आपको फीलिंग आने लगेंगी कि मैंने अपना रुख उधर फेर लिया। लेकिन असल तो आपका नमाज में अल्लाह से ताल्लुक है ना, असल ताल्लुक अल्लाह से होता है। कौमों पे जब जवाल आता है ना, तो अंदर से नमाज की रूह तो खत्म हो चुकी होती है। कद अफलहल मोमिनून अल्लज़ीन हुम फी सलातिहिम खाशियून, सूरह मोमिनून पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि जो असल नमाज की रूह थी ना, वो कोई नहीं रहती, तो जाहरी चीजों पर टकने लगते हैं। किबला इधर, इधर नहीं, इधर, अच्छा फजर इतने बजे नहीं, दूसरी मस्जिद वाले कहते इतने बजे, तीसरी वाले कहते इतने बजे, असर की नमाज नहीं, हमारी मस्जिद की भी नमाज नहीं हुई, वो कहते 4 बजे पढ़ो, हम कहते नहीं हम 5:30 पढ़ेंगे। यानी वक्तों पे, किबलों के रुख पे, जाय नमाजों के रंगों पे इतनी बहसें करेंगे कि वो नमाज में जो एक अल्लाह से मोहब्बत और कुर्ब था वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल आज यही चीज उम्मत मुस्लिमा में दिखती है, जाहरी चीजों पे बड़ी बात है। नमाज में हाथ ऊपर किए कि नहीं किए, अल्लाह अकबर किया, हाथ यहां बांधे, حنفی کہتے ہیں ذرا پیٹ پہ باندھ لو، اہل حدیث کہتے ہیں سینے پہ باندھ لو، کوئی کہتا ہے چھوڑ دو، اسی پہ جھگڑے شروع. آج کوئی احناف کی مسجد میں آ کر رفع الیدین کر تو دیکھے، اونچی آواز میں آمین کہہ کر تو دیکھے قیامت آ جاتی ہے. ایسے جنگ لگنے کا ڈر ہوتا ہے جیسے کسی دشمن نے حملہ کر دیا. یہ مسئلہ اس دور میں بھی تھا، اس کا رد کیا جا رہا ہے کہ خدا کے لیے ان چیزوں کو چھوڑو. امت نماز کوئی نہیں پڑھتی، تمہیں اس کی فکر نہیں ہے. کوئی پڑھنے لگ جاتا ہے تو تم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہو. قرآن اور سنت دے دو، نبی کی کتاب دے دو، حدیث دے دو، بخاری پڑھا دو، اس میں نبی کا طریقہ دیکھ لو، جس چیز میں گنجائش ہے لے لو. فقہ اور چیز ہوتی ہے، عقیدہ کوئی اور چیز ہے. عقیدے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، فقہ میں کئی جگہ گنجائش موجود ہے. اللہ کے نبی رکوع سے اٹھنے کے بعد دوبارہ ہاتھ باندھ بھی لیتے تھے اور کبھی کھلے بھی چھوڑ دیتے تھے. اب ہم پاکستانی انڈین لوگ ہمیشہ ہاتھ کھولتے ہیں، عرب لوگ ہاتھ باندھ دیتے ہیں. کئی لوگ حج سے آتے ہیں تو غیبتیں شروع ہو جاتے ہیں، دیکھو دیکھو ان عربوں کی نمازیں یہ ہاتھ باندھتے ہیں. بھائی دونوں طرح ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اس بات کو ختم کیا جا رہا ہے کہ اپنی ظاہرداری کو چھوڑو اور دوسری چیز کی طرف آ کے کرو. اب آپ، میں انشاءاللہ ایک ایک لفظ کے ساتھ جب اس کو پڑھیں گے تو اس میں سے خزانہ نکلے گا. یقین کریں اس سبق کے اندر اتنی عمل کی باتیں ہیں کہ واقعی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا ان چیزوں سے.